अब हम एक मिसाल देखेंगे अल्लाह सुबहान तअला के बारे में, आयत नंबर 28 से। दरबलकुम मसलम मिन अनफुसिकुम, वो बयान करता है तुम्हारे लिए एक मिसाल तुम्हारे अपने ही अंदर से। यानी पीछे गौर व फिक्र करवा दिया इंसानों की तख्लीक, इंसान कहाँ से बने, क्या उनकी औकात थी, कैसे दुनिया में फैल जाते हो, किस तरह तुम एक सांस लेने के लिए भी अल्लाह तआला के मोहताज हो। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी ही सोच, ये जो है ना तुम्हारे अंदर से, तो मुराद है कि तुम्हारी नफसियाती कैफियत को सामने रखते हुए, यानी जिस तरह तुम अपने साथ कोई चीज़ पसंद नहीं करोगे उस बात को सामने रखते हुए। मिसाल क्या है, अब आगे इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। हल्लकुम मिम्मा मलकत अईमानुकुम मिन शुरका अफीमा रज़क़नाकुम, भला वो गुलाम और लौंडियाँ जो तुम्हारी मलकियत में हैं, क्या इनमें से कुछ तुम्हारे शरीक बन जाते हैं उस माल और असबाब में जो हमने तुमको दिया, ताकि फअन तुम फी ही सवा उन, ताकि तुम और वो सब बराबर हो जाएं। मिसाल समझ आई। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जो माल और असबाब हमने तुमको दिया है, कैश की सूरत में, प्रॉपर्टीज की सूरत में, गोल्ड की सूरत में, घरों की सूरत में, और ये लिस्ट मैं इसलिए गुनवा रही हूँ कि इसके बगैर समझ नहीं आता। हो सकता है बेसोचिया समझे, हम कहते हैं हाँ हाँ कोई हर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुम अपना माल सारा अपने एक गुलाम या नौकर या एम्प्लॉय के सब बराबर का शेयर कर सकते हो कि वो भी और तुम बराबर हो जाओ। मसलन तुम्हारे पास 10,000 पाउंड है, उसके पास 100 रुपया भी नहीं है, ये 100 पाउंड है, तो आप ऐसा करो कि आप अपने अकाउंट में से 4,900 पाउंड उसको दे दो, ताकि तुम और वो दोनों 5,000-5,000 के बराबर हो जाओ। कोई चाहता है ऐसा? करता है? अपनी सारी जायदाद के आधे हिस्से करो और दे दो। आपने देखा कि खून के रिश्ते जब माँ बाप की जायदाद लेते हैं उस वक्त कितना बुखल करते हैं, कितना है उस वक्त डंडी मारने की कैफियत है, और कहाँ घर के मुलाजिम, और घर के मुलाजिमों को दे दें ताकि फिर वो हमारे काम ही ना करें। कोई चाहता है ऐसा? तो फिर ये सोचो कि तुम तो मखलूक हो और तुम्हारा गुलाम भी मखलूक है, तो क्या खालिक और मखलूक ऐसे हो सकती है? इशारा है लोगों के उस शिर्क की तरफ जिसको आप कह सकते हैं कि शिर्क फित तसर्रुफ, और दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं शिर्क फित दुआ। शिर्क की बहुत ही मारूफ किस्म ये रही है कि दूसरों के दर पे जाके दुआ करना और सोचना ये कि हम अल्लाह ही से ले रहे हैं, लेकिन इन बुजुर्गों के जरिए। इसी तरह से बास लोगों का ये अकीदा होता है कि ये बुजुर्ग अपने मुकाम के एतबार से इतने ऊपर जा चुके हैं कि अब अल्लाह ने कुछ इख्तियारात इनको बांट दिए। वो दुनियावी बातों पर क्यास करते हैं ना कि वज़ीरे आज़म है तो उसने अपने कुछ इख्तियारात सदर को दिए हुए हैं, तो सदर ने वज़ीरे ख़जाना को दिए हुए हैं, तो वज़ीरे ख़जाना ने आगे अपने MPA को दिए हुए हैं, तो दिस एंड दैट। इंसानों पे क्यास करते हैं, हालांकि ये भूल गए कि ला यऊदुहू हिफ्ज़ुहुमा, उसको तो इन दोनों की हिफाजत थकाती नहीं है, क्योंकि उस जैसा तो कोई है ही नहीं है। तुम थक जाते हो, तुम्हारे अंदर कमजोरी है, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, तुम्हें मौत आ जाती है, उसका हाल यह है कि कुल्लु शैइन खालिकुन इल्ला वजहू, तो ना उसको मौत आनी ना कमजोरी है, तो वो ऐसे काम क्यों करेगा? तो लिहाजा जरूरत है इस बात की कि तुम अल्लाह के माँ सिवा से मांगना छोड़ दो। आप जरा सोचें कि ये आयतें मक्का के अंदर उतरती हैं और जहाँ गली गली में बुत पड़ा है। आज किसी मुशरिक मुल्क का सोच लीजिए जहाँ बुतों को पूजते हैं, और ये आए जाके वहां पड़े तो लोग तो हो सकता है कि आपके ऊपर छपट ही पड़े कि आप हमारे बुतों की, बुत तो वो कहते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारे माई बाप है या ये हमारे दाता हैं, और नाउज़ुबिल्लाह क्या कुछ इस तरह की बातें। लोगों की तो ऐसे जैसे दुखती रग पे पांव पड़ जाता है इस बात को सुनकर कि जिनको तुम बड़ा मानते हो, जिनसे तुम मांगते हो, उनके इख्तियार किधर है, उनके हाथ में है क्या? तो तुम बताओ जब ये काम तुम नहीं करते तो क्या अल्लाह की जात करेगी? कोई भी नहीं करता। तखाफू ना हम, क्या तुम उनके बारे में ऐसे खदशात रखते हो, कखीफतिकुम अनफुसकुम, जैसे खदशात तुम्हें खुद अपने बारे में। अपने बारे में इंसान को क्या खदशे होते हैं कि हाय मेरा माल कम ना हो जाए, हाय मेरे बच्चे नालायक ना निकले, हाय मेरे शौहर को कुछ ना हो जाए, मेरी बीवी को कुछ ना हो जाए, और इंसान हमेशा पास होने के बावजूद फ्यूचर के लिए फिक्रमंद रहता है। क्या ऐसा ही फिक्र तुम्हें अपने गुलामों का और अपनी लौंडियों का भी है कि वो बेचारे मुस्तकबिल कहाँ से खाएंगे, अगर मैंने इनको निकाल दिया तो इनका क्या होगा? कभी भी नहीं। वहां तो हम कहते हैं अच्छा जाओ फिर, अल्लाह मालिक है इनका, जब गुस्सा आता है तो 1 मिनट में हम मासी को निकाल देते हैं, कहते हैं जाओ फिर जिधर मर्जी धक्के खाओ। कल तक हमारे घर थे तो हम उनकी हर चीज का ख्याल रखते थे, आज वो चले जा रहे हैं तो कहते जाते हो तो जाओ। और आप देखिए जब तक मुलाजिम पास रहता है उसका दुख सुख होता है, गर्मी सर्दी खाना पीना हर चीज़ में शामिल करते हैं। जब वो चले जाते हैं तो एक दो हफ्ते के बाद याद भी नहीं आते। फिर जो नए नौकर होते हैं हमारे घरों के, वो हमारे मुख्ताज होते हैं। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें उनके बारे में तो कोई फिक्र नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो कि हमें इनकी बड़ी फिक्र है। कज़ालिक नुफस्सिलुल आयाति लिकौमि याकिलून, इसी तरह हम अपनी आयात की तफसील करते हैं इन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। अब यहाँ अक्ल को सोचिए, अक्ल कहती है कि इंसान को इस बात को सुनकर शिर्क का असल समझ आ जाना चाहिए। तुम कैसे सोच सकते हो कि अल्लाह अपनी मखलूक को अपने बराबर कर लेगा? तुम लोग खुद मानते हो कि अल्लाह बड़ा है, वो ऊपर वाला है, वो यकता है, वो दाता है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। तो तुम अपने हाथों के बनाए हुए छोटे छोटे बुतों के बारे में ये गुमान करते हो कि अल्लाह ताला इनको अपनी मर्जी में रखता है। तो याद रखिए, कोई फरिश्ता हो, नबी हो, वली हो, कोई भी बड़े से बड़ा हो, वो सब अल्लाह की मखलूक है, और खालिक और मखलूक कभी बराबर नहीं होते। अब इस मिसाल को जब हम पढ़ते हैं तो क्या लगता नहीं कि जिसने ये मिसाल दी है वो हमारी नफसियात को भी जानता है? अगर हम इंसान बात करते तो हम कभी भी इस तरह से इतनी डीप डाउन जाके बात ना करते। इससे पता चलता है कि ये कुरान अल्लाह ताला ही का कलाम है। जिसने हमें पैदा किया उसने ही हमारी सोच बनाई, उसको हमारे अंदर बाहर का पता है। तो लिहाजा शिर्क से बाज आ जाओ। हमारे लिए अमल की बात क्या इस हिस्से को सुनने के बाद कि शिर्क को अपनी जिंदगी से ऐसे उखाड़ फेंके कि जैसे कि जिंदगी में कोई ऐसी चीज हमारे जिसका कोई एक जर्रा भी हमारी जिंदगी के अंदर जहर भर देगी, ये हालात होने चाहिए। जाहरी बातनी शिर्क को ढूंढें। माशाल्लाह आप देखिए किसमें पारे पे पहुंच गए हैं। अब इस लेवल तक तो हमें कम से कम शिर्क की मोटी मोटी किस्में और उनका फर्क और उनसे बचने के तरीके ये साफ याद होने चाहिए। हम किताबें पढ़ पढ़ के लोगों को जवाब नहीं देंगे कि शिर्क की कितनी किस्में और ये शिर्क है नहीं, ये कौन सा शिर्क है, ये तौहीद है कि नहीं, ये जब तक दिल की तख्तियों पे नहीं लिखा होगा। और दिल पे लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि कभी भी नहीं मिटेगा। अमल वही करता है जिसके पास इल्म दिल के अंदर होता है। किताबों से लिख लिख के और देख देख के पढ़ने वाली चीजें तो वक्त पे कभी मिलती नहीं, याद ही नहीं आती। अल्लाह ताला कहते हैं लेकिन इतनी बड़ी हकीकत के बावजूद लोगों का हाल क्या, बल्कि हकीकत यह है कि इन जालिमों ने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की बगैर किसी इल्म के, या फिर लफ्ज नोट कीजिएगा बगैर इल्म के। और आज भी ये हकीकत है, कब्र परस्ती और पीर परस्ती का शिर्क बे इल्म लोगों में है। और बे इल्म दो किस्म के होते हैं, एक है जिसको दुनियावी इल्म नहीं आता, जिसको हम उम्मी कहते हैं, अनलेटर्ड कहते हैं, दुनियावी तौर पे थोड़े पीछे वाले लोग होते हैं, माल में भी कम होते हैं, इल्म में भी कम होते हैं। ऐसे लोगों को एक जाहरी नजर आने वाला सहारा चाहिए होता है, तो वो फिर बुजुर्गों की कब्रों को और उनके उर्स मनाकर और मेले ठेले लगाकर अपने दिल की ये ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। वो लोग ऐसी चीजों में आते हैं जिसमें दूसरों को बड़ा बना, क्योंकि इनमें ईगो नहीं होती ना और इनके अंदर तकब्बुर भी नहीं है। लेकिन एक दूसरी किस्म के बगैर इल्म बे इल्म लोग होते हैं जो दुनियावी लिहाज से बहुत पढ़ चुके होते हैं लेकिन अल इल्म से महरूम है। इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इस बात से वो दूर है। अब चूंकि इनके मिजाज में थोड़ा बड़ापन होता है कि हम बहुत बड़े, जाहिर है हम पढ़े लिखे हैं, हम इन लीड्स में से हैं, हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। अब जब ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं तो फिर ये अमूमन ये कब्रों पे बैठे हुए बुजुर्ग और पीर इनको कुछ नहीं समझते। देखो इनसे बू आती है सीने की, और चूंकि इनको आदत ही नहीं होती किसी को बड़ा मानने की तो फिर ये बड़ा नहीं मानते। अब ये कब्रों पर तो नहीं जाते, और इसी तरह से ये जाके किसी के दर पे आके नहीं बैठते, और क्योंकि ये कभी झुके ही नहीं ये सजदे भी नहीं करते। लेकिन फिर इनका इल्म कौन सा है? ख्वाहिशों का इल्म है। इसीलिए आप देखिए अहवा अहम की बात आई है, ये ख्वाहिशों के पुजारी, इनको ये पता है कि वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन गेट। इनका शिर्क है ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो हम काम फौरन कर सकते। एक दफा जरा मुझे मुल्क की बड़ा सदारत दें फिर देखे मैं दुनिया का क्या नक्शा बनाता हूं, और एक दफा ये एक दफा ये। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जुल्म है ये लोगों का कि वो ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं बगैर इल्म के। तो इस शख्स को कौन हिदायत देगा जिसको अल्लाह ने भटका दिया हो? हर धर्म जो होता है ना उसको सजा मिलती है, क्या कि फिर अल्लाह गुमराही की मोहर सख्त कर देता है। लिख लें ये जुमला, हर धर्मी की सजा गुमराही पर मोहर की सूरत में मिलती है। अल्लाह फिर इतना पक्का कर देता है, जो आपने पीछे पढ़ी है बहुत दिन गुजर गए आयत गुजरे हुए, लेकिन याद कर लीजिए कि अल्लाह ने क्या कहा कि वल्लाहु यहूलु बैनल मरी व कल्बी, सूरत अल-अनफाल की आयतें, कि अल्लाह बंदे और उसके दिल में हायल हो जाता है। इसी तरह आठवें पारे के आखिरी आयतों को पढ़ लीजिए दोबारा, अल्लाह बंदे को फिर आने ही नहीं देता हिदायत की तरफ क्योंकि वो कहता है मैं ठीक हूं, जो मेरा रास्ता है वो ठीक है, जो मेरा फैसला है वो ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई दूसरा नहीं कर रहा। तो अल्लाह कहते हैं फिर तुम मज़े में रहो। बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे इंसान सोचता है वैसे फिर उसकी सोच दिन ब दिन पक्की हो जाती है। आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम ईजी हो जाएगा और उसके लिए बहुत सारे लॉजिक्स आपको मिलेंगे, और गलत काम करेंगे तो उस गलत काम की वजह से आपके साथ यही होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं वमा लहुम मिन नासिरीन, अब कोई इनके लिए मददगार नहीं है। अब अगली जो आयत है ना, आप इनको समझ लीजिए कि ये दीन की बुनियाद और असल है। जो कोई आपसे पूछे ना कि व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम, तो आप अगली आयतें सुना दीजिए। फाकिम वजहक लिद्दीन हनीफा, बस तुम कायम रखो अपने चेहरे को अल्लाह के दीन के लिए यकसू होकर, बी फोकस्ड। ये है बंदा मोमिन से मतलूब। शिर्क छोड़ो, जाहरी छोड़ो, बातनी छोड़ो, इधर उधर झुकने वालों को छोड़ो, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक रब के आगे झुक जाओ। एक बुक भी इंग्लिश की, पावर ऑफ द फोकस, किसी की शेयरिंग सुनी थी तो उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया, कि उसमें भी वो यही कहते हैं कि जब बंदा एक हस्ती के ऊपर फोकस हो जाता है ना तो वो मुतमईन होता है। देखिए हम अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही करते हैं, आपने देखा होगा जब तक कोई फैसला नहीं किया था दो चीजों के बीच में लटके रहते हैं, कभी एक चीज अच्छी लग रही है तो कभी दूसरी, दूसरी अच्छी लगती है तो पहली बुरी लगती है, एक दफा कहते हैं ना खत्म यही ठीक है तो मुतमईन है। आप कपड़े लेने गए, दो जोड़े सामने रख के खड़े हैं, कौन सा लूं ये लूं, कभी उसकी खूबी दिखती है कभी उसकी, सोच साच के जूं ही आप कहते हैं बस डन ये लेनी, डन लेते हैं फिर आपको वो सबसे अच्छी लगती है, फिर घर आपके कहते हैं शुक्र है अच्छा ही लिया, ठीक ले लिया ना। यही रिश्तों में मामला होता है, यही घरों में होता है, कोई चीज खरीदते हैं। जब एक इंसान दिल से मान जो लेता है कि यही चीज मेरे लिए बेहतर है, फिर उसको इधर उधर मुंह उठाने की क्या जरूरत है। वो एक सजदा जिसे तू गिरान समझता है, हजार सजदों से दिलाता है आदमी को निजात। जब कह जो दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर इधर उधर क्यों ताका जाकी करते हो, फिर इधर उधर जाके उसके आगे दूसरे आगे वो करने वाला, वो बनाने वाला, वो देने वाला, इस उस की बात को क्यों सामने रखते हो। सोचने की बात है कि इंसान जब इन सारी चीजों के ऊपर आता है तो फिर वो सोच में पड़ जाता है कि अल्लाह से क्या नहीं मिलता जो दूसरों के पास जाते हो। देखिए आपकी एक जगह से जरूरत पूरी ना हो ना, फिर आप दूसरी चीज को सोचे कि भाई ये मेरी जरूरत नहीं पूरी हो रही, मैं कुछ और सोचूं। आप एक स्टोर में गए, आपको हर चीज वही अच्छी बेहतरीन मुनासिब ड्यूरेबल कन्वीनियंट मिल गई, बहुत अच्छी डील मिल गई, क्या आप उसके बाद चार छह दुकानों पर जाना चाहते हैं। बेवकूफी की बात ही है ना। जब रब से सब कुछ मिलता है, आसन मिलता है, आला तरीन मिलता है, तो फिर मैं किसी और के पास क्यों जाऊं। मैं तो इसी से लेती हूँ। दुनिया में कई लोग कहते हैं ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जी, ये पहले नाना कहते हैं फिर हमारे हुए, अब हमारे बच्चे भी इधर जाते हैं। फोकस्ड हो गए ना आप लोग। तो फाकिम वजह कले दीनी, क्या है कि इंसान दीन के लिए हनीफन हनीफ बन जाए। तुम अपने किरदार में एक ऐसी शान पैदा करो कि लोग तुम्हें कहें कि ये है तौहीद वाला। तुम्हारा एक एक अमल तुम्हारे दावों की गवाही बन जाए। ये बिल्कुल वही बात है जो सूरत अल अनाम की आखिरी आयतें 162 में हमने पढ़ी थी कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कहिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है, जहानों का रब है। सब झमेलों से अपने आप को आजाद करो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कह दो इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। कह दो कि मैंने तो अपना रुख यकसू होकर उस हस्ती की तरफ जिसने आसमानों जमीन को बनाया उसकी तरफ कर लिया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। सूरत अलनाम की आयत 79 है। किस चीज की तरफ झुके, क्या करें। अगला हिस्सा ले लीजिए, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह की बनाई हुई फितरत पर, यानी किस पे कायम रहो, वो जो पीछे बात है ना फाकिम वजह का, तो किस पे कायम रहो, तो फितरत अल्लाह ही पे रहो, अल्लाह की फितरत पे कायम रहो जिस पर इसने लोगों को पैदा किया। अब ये कौन सी फितरत है, ये वही फितरत है जिसका जिक्र हम बीसियों बार कर चुके कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, इसको फितरत सलीमा कह लीजिए। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। फअबवाहू, फिर उसके माँ और बाप युहव्विदानी ही, या तो उसको यहूदी बना देते हैं, और युनस्सिरानी ही, या उसको नसरानी बना देते हैं, और युमज्जिसानी ही, या उसको मजूसी बना देते हैं। तो फितरत क्या है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, फितरत सलीमा के ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी अगर लोगों को एक ऐसी दुनिया में छोड़ दिया जाए ना जहाँ कोई किसी के खिलाफ बात ना करे, मुसलमान बुरे और नबी सल्लम के खिलाफ बात ना हो, किसी आयरलैंड में छोड़ दें किसी पैदा होते बच्चे को जिस पे माहौल का असर ना हो, लोगों की बातों को ना सुना हो, कोई रिएक्शन ना हो, उससे पूछे तो वो बच्चा कहेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वज्जह तो वजी अलिल्लज़ी फतर अस्समावाती, सूरज चांद सितारे कैसे, उनको कौन पढ़ाता है, उनको किन नबियों ने आके बताया। चले आप कहेंगे मान लेते हैं वो बेजान है, ठीक है, अल्लाह ने उनसे वो काम बजोर करवा लिया, तौन व करहन करा लिया जो अल्लाह ताला हम सबसे मर्जी से चाहता है हम अपनी खुशी से करें, लेकिन हम सबको तो अक्ल दी, दरख्तों को तो अक्ल भी नहीं दी, पहाड़ों के पास तो अक्ल भी नहीं है, सूरज की तो आंखें भी नहीं है, चांद के तो कान भी नहीं है, तो एक इंसान आंखें कान दिल दिमाग अक्ल रखने वाला, और अल्लाह ने उसको कितने प्यार से बनाया, किस तरह अल्लाह की जात हमारे जिस्म की एक एक जरूरत को इस कायनात की चीजों से पूरा करता है। अगर किडनी बीन्स हैं देखने में गुर्दों की तरह तो वो गुर्दों के लिए फायदेमंद है, अगर गाजर को काट के बीच में उसको देखे तो आपकी आंख का अंदर का जो कॉर्निया वो है और गाजर एक जैसी है तो गाजर खाए तो आपकी आंखें बड़ी काम करेंगी, और अगर आप अनार खाते हैं तो अनार को अगर आप जब काटते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर से जो एक किस्म की फीलिंग्स हार्ट की शेप की आती है, यानी एक एक चीज बोलती है कि मुझे रब ने बनाया। जो अखरोट है वॉलनट बोलते हैं उसको, आप देखिए अखरोट जो है उसका बिल्कुल जब इकट्ठा देखते हैं गूदा तो वो बिल्कुल दिमाग के गूदे की तरह, लोग अखरोट खाएं तो आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, वल्लाही हम इतनी चीजें खाते हैं लेकिन हम बनाने वाले देने वाले पे नहीं आते, जो हमें पकड़ाते हैं ना हम उसका 100 दफा थैंक यू कहेंगे, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू, वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी टेस्टी, जजाक अल्लाह, जाते जाते दावत में भी शुक्रिया बोल रहे होते हैं, खत्म, फिर उसके भूल जाते हैं, लेकिन जिसने असल में दिया उसको नहीं जानते, ऐसा इंसान ना शुक्रा होगा। अल्लाह ताला फरमाते ला तब्दील अली खल्किल्ला, अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती, ये भी है इसका तर्जुमा, और एक और तर्जुमा भी इसका किया गया है कि अल्लाह की बनाई हुई साख को तब्दील ना करो, औरत को औरत रहने दो, मर्द को मर्द बनाओ, बेटियों को बेटियां रहने दो, बेटों को बेटे बनाओ, घरों का निजाम ऐसे ना बिगाड़ दो कि मर्द घरों में बैठे घर के काम कर रहे हैं और तुम औरतें बाहर कमा रही हो, तुम औरत हो तो औरत बनो, मर्द हो तो मर्द बनो, तुम सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर डाल के ना बड़े बड़े फैसले कर लो। अल्लाह ने क्या क्या फितरत बना दी, आप देखिए सोने से लेके जागने से लेके जितनी बातें अभी तक हमने आयतों की सूरत में पढ़ी है, सूरत में मिनायाती ये सब अल्लाह की फितरत है, ये अल्लाह की तख्लीक है। आप देखिए कि इंसान जानवरों को बाज बार स्टरलाइज कर देता है, बस लोग पूछते हैं कि बिल्लियां घर में रखी हुई हैं तो क्या हम इनके ऑपरेशन करा दें, ला तब्दील अली खल्किल्ला, नो सॉरी कभी भी नहीं कर सकते, जब अल्लाह ने एक बिल्ली के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो बच्चे पैदा करे तो आपको करने पड़ेंगे, आप अपने शौक की खातिर उसकी नस्ल काट रहे हैं और आप जब उनको काटते हैं आपको तो उनके अंदर इतनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं वो बाद में आपके जरासीम बनते हैं। यदि कभी पढ़ के और सुन के देखिए जहां इंसानों ने फितरत में दखल अंदाजियां की वहां परेशान हो गए, तो कज़ालिक दीनुल क़य्यिम, ये है सीधा दीन, इट्स स्ट्रेट रिलीजन, इस दीन सिरातल मुस्तकीम का जो तुम्हारी दुआ है वो असल में ये दीन कय्यम है, सीधे चलो अल्लाह के साथ, अल्लाह भी तुम्हारे साथ सीधा रहेगा। इतना दीन को चूचू का मुरब्बा बना लिया, हलवा पूरी बना लिया, कहीं इधर से काटा कहीं उधर से छंटा, कहीं उसमें चावल डाले, अदरक डाला, लहसुन डाल, यानी ऐसे लगता है आज अल्लाह के दीन का टेस्ट हमने अपनी ख्वाहिशों की वजह से बदल दिया, कहा नहीं जालिका दीनुल कय्यम, क्या है जालिका, फितरत अल्लाह अल्लती और ला इलाहा इल्लल्लाह, एक रब को मानना, ये है असल में इंसान का अपनी फितरत पे रहना। देखिए आप इसको बच्चे से समझ लें, एक ही माँ होती है ना, बच्चे का दिल जैसे माँ से झुकता है ना किसी और औरत से नहीं झुकता, हाँ ये बात है माँ मर गई बच्चे ने पैदा होते ही आंख किसी और माँ के हाथों में खोली तो उसको माँ कह लेगा, लेकिन हम महसूस करेंगे कि इंसान की फितरत के अंदर अर्ज है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। एक दफा किसी की बात सुन रही थी जो शायद आपने सुना होगा, अब्दुस्तारीदी हैं तो उनकी जो बीवी हैं उन्होंने एक दफा शेयरिंग की थी कि वे झूला के नाम पे एक इदारा बनाया हुआ कि जहाँ लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है, ये पाकिस्तान की बातें हैं और आज से 10-12 साल पहले की बातें हैं, कि आप जिन नाजायज बच्चों को मार के कूड़े के ढेर पे फेंकते हैं फेंकने की वजह झूले में डाल जाया करें तो कोई इनको पाल लेगा, इसका मतलब कि वहां भी ये गंदगी है। खैर तो वो कहती है कि वो बच्चे जब वहां से निकलते फिर हम उसको पालते हैं और फॉस्टरिंग करते हैं और लोग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो कहती है कि हम देखते हैं कि वो बच्चे जिनको अपने माँ बाप का नहीं पता, हमें भी नहीं पता होता तो उनको क्या पता होगा, तो बड़े होने के बाद भी यानी वो इस तड़प में होते हैं कि फूट फूट के, उन्होंने बताया एक बच्चे का कि बड़ा जवान लड़का बन गया लेकिन मेरे पास आके फूट फूट के रोया कि एक दफा बस मुझे बता दो कि मेरी माँ कौन है। आप अपने ऊपर ले। हाँ, अगर हमें माँ का पता ही ना होता तो माँ की मोहब्बत कहाँ से आती, तो माँ के लाड कहाँ से आते, तो माँ का प्यार और माँ की दुआएं कहाँ से आती। हमें तो ये बिन मांगे मिली हुई दौलतें हैं ना, हम सोचते नहीं। तो रब तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। कभी अपने ऊपर ले। आप अपनी माँ के अलावा किसी और से मांगती हैं? शादी से पहले की जिंदगी देख ले, माँ ही के ऊपर नजरें होती हैं। दे तो भी माँ, ना दे तो भी माँ। माँ कोई चीज ना लेके दे, साथ खड़ी उसकी दोस्त कह दे आओ बेटा मैं तुम्हें दिला देती हूँ, तो कहते नहीं अम्मी से लेना, अम्मी देंगी। तो फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैह, तौहीद को अपने खून में ऐसे रचा लें कि आपकी सारी कमजोरियां दूर हो जाएं और आप खड़े हो जाएं, फिर आप नहीं बैठेंगे। सारी दौलत तौहीद की है। दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत किसी इंसान को अगर कोई मिली है ना आज तक, तो वो तौहीद की दौलत है। ये इंसान को हथियारों से बेनियाज कर देती है, ये आग में गिरा देती है तो नहीं जलता इंसान, ये इंसान को मछली के पेट से बचा लेती है, ये कुएं में से भी अहसन तौर पे निकल आता है, और मैं और आप भी उसी राह के राही हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने रब पे नजरें लगाएं, फिर देखें आपके साथ होता क्या है। लेकिन शर्त एक है कि हनीफन, फोकस्ड, इधर देखो ना उधर देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे चलते जाओ। अब उसके तरीके बताए जा रहे हैं अगली आयत में। अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिक दीनुल क़य्यम, ये दीन का तरीका है, ये सीधा दीन है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म ही नहीं रखते। अब हम और आप इल्म रख रहे हैं तो फिर देख रहे हैं ना ये चीजों को। इल्म की कमी बंदे को उसकी तौहीद से दूर कर देती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं करो क्या। अब ये आपसे कोई सवाल पूछे कि कैसे फोकस्ड हो, या जो पिछली आयत के लफ्ज जोड़ ले कि फाकिम वजह कले दीन ही हनीफा, तो सवाल बन सकता है कि दीने हनीफ के लिए कैसे हम कायम हों, कैसे खड़े हों। तो उसकी अब स्टेप्स है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुनीबीन इलैही, रजू करते हुए उसी की तरफ। मुनीब नौब से है, इसी से लफ्ज उनीब भी है। आप या आप से भी आप अगर देखें ना तो इसका लफ्ज मिलता है। मुनीब क्या है, सबसे कट के आगे आ जाए। पिछली आयतों में फाकिम वजह कले दीनी हनीफन जो चीज थी ना, वही यहां मुनीबीन इलैही है। आप फोकस कह लें, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह लें, कुछ भी कह लें, कि अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं कि तुम सब उसकी तरफ झुक जाओ। फर्क एक छोटा सा बस, अगर आपने महसूस किया तो। वहां क्या था, फाकिम आप करें, ओनली यू, वाहिद का सीगा था, वजह का अपने चेहरे को, यानी वहां नबी सल्लम को कहा गया था, और यहां मुनीबीन जमा का सीगा है। अब ये उम्मत को कहा जा रहा है कि नबी तो अल्हम्दुलिल्लाह फोकस्ड हो गए थे, लेकिन ऐ उम्मत तुम भी तो फोकस्ड हो जाओ, अब तुम भी तो अल्लाह की तरफ आ जाओ। मुनीबीन इलैही, झुको उसकी तरफ, दौड़ो उसकी तरफ, तुम्हारी नजरें उसकी तरफ। ये जो दिन की 5 नमाजें हैं ना, ये भी मुनीबीन की कैफियत है। थोड़ी देर गुजरती है फिर नमाज, फिर भागो मस्जिद की तरफ। कभी उमरा किया हो, हज किया हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद बैतुल्ला में जाके वो तवाफ करने को दिल कर रहा है, मुनीबीन इलैही। बाजारों में दिल नहीं लग रहा, होटलों में दिल नहीं लग रहा, खानों में दिल नहीं लग रहा, किधर दिल लग रहा है, काबा में दिल लग रहा है। और वो कैसा घर है कि जिसमें कोई पंप एंड शो नहीं है, कोई ग्लैमर नहीं है। जब बंदे को रब से मोहब्बत हो जाती है ना, फिर उसका दिल कहीं और लगता नहीं है। वो कहता है मुझे अकेले छोड़ दो, मैं खुश हूं, तुम जाओ मैं खुश हूं। भाई आप घर में अकेले क्या करेंगे, कहीं चले जा, लोग महफिलों में इंजॉय कर रहे हैं, वो वहां भी उस वक्त अपने रब के रंग देख रहा है कि अल्लाह तूने कैसे बंदे बनाए, अल्लाह तो कैसे काम करते हैं, अल्लाह तू तो क्या चाहता है और लोग क्या करते हैं। यानी ऐसा बंदा कभी तनहा नहीं रहता और लोगों से मुख्तलिफ बिहेव करता है। जो सब बिहेव करेंगे ना, मुनीब उससे ऑपोजिट बिहेव करेगा। धंधे के सब इधर से उधर जा रहे हैं ना, तो मुनीब उधर से इधर आ रहा है। लोग खुशियों में भागते हैं लोगों की तरफ, मुनीब कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, तारीफें करता है, अल्हम्दुलिल्लाह ही बिनेमतिही ततिम्मुस सालिहात। अल्लाह के नबी ने कहा किसी को कोई खुशी मिले तो ये दुआ के कि अल्लाह तेरी नेमत रहता है कि सारी नेमतें पूरी होती हैं, और अगर कोई गम मिले तो फिर दुआएं करता है कि कदर अल्लाह मा शा फाला, ये जो अल्लाह का हुक्म था हो गया। वो कभी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं देता अपनी महरूमियों का, उसकी वजह से, इसकी वजह से, उसने चाहा, इसने चाहा, इससे हुआ, दिस से हुआ, और दिस और दैट। और ऐसा बंदा फिर वाकई अल्लाह की तरफ जब मुनीब होता है तो फिर उसकी कैफियत क्या होती है, वत्तकू, और उसका तकवा इख्तियार करो। देखिए मुनीब कह के आप रब की तरफ गए और वत्तकू कह के रब की मौजूदगी का एहसास हुआ। तकवा कह के रब तुम्हें दिखने लगे। दोनों में बहुत ऑपोजिट है, पहले आप रुजू करेंगे अल्लाह ताला की तरफ, फिर अल्लाह ताला भी आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। अधूरे दिल से, अधूरी कोशिशों से, बेसुर नमाज से, जिसमें ना कोई कैफ था ना कोई लज्जत थी, उसमें अल्लाह क्यों आपकी तरफ आए? आप एक दफा अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हैं, अल्लाह ताला 10 दफा आपकी तरफ करते हैं। आप चल के आते हैं, अल्लाह ताला भाग के आते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए 10 10 हाथ आगे कर देते हैं। शर्त एक है कि आप अल्लाह की तरफ मुनीब हो जाए। अगर बाकी जो जिंदगी रह गई है हमारी, किसी को नहीं पता कितनी है, अगर आप उसकी लज्जत पाना चाहते हैं तो इन आयतों पे अमल की कोशिश। सारे सहारे काटें, सारी डोरियां काटें। देखिए तारीख से वाकयात पढ़ के देखें कि जब लोगों को अल्लाह से यकीन की मोहब्बत होती है ना, तो वो समंदरों से निकलकर कश्तियां सारी जला देते हैं, कि कश्तियां जला के आगे जा रहे हैं, आना ही नहीं है वापस, या कटेंगे मरेंगे या वहीं के बादशाह बन जाएंगे। अल्लाह ने मुल्क फतह करा दिया। और वो कहते हैं ना कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, कि बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुस्लिम तारीख का ये हिस्सा है कि मुसलमानों का सरदार जो था, एक बहरी बेड़ा लेकर आ रहा था, समंदर में आ रहा था, उसके बाद दुश्मन तक पहुंचने में तकरीबन 6-7 किलोमीटर का फासला था, खुशकी का था। इतने जोश से उसने जहाज खींचा कि वो बहरी जहाज वो 6-7 किलोमीटर तक खुशकी पे भी भागता गया। लोग घबरा गए, ये क्या हो रहा है, ये कैसे लोग हैं? लोगों ने जब अपने आप को समंदरों के अंदर डाला, वो दरियाई घोड़ों की तरह तैरने लग गए, और दूसरे जो लोग थे दुश्मन, वो आदम खोर कहते हुए भाग गए। सारा इलाका मुसलमानों को बगैर लड़ाई के मिल गया। ये खेल नहीं है, ये मजाक भी नहीं है, और ये झूठ भी नहीं है। ये आज भी हो सकता है। शर्त एक है कि तुम अपने रब के साथ अपने आप को जोड़ दो। वत्तकू, कौल, फेल, अमल, इसमें यकसानियत कर लो। एक झूठ से भी ना किसी को कहो कि मुझे आपसे बड़ा प्यार है, अगर प्यार नहीं है तो। और किसी को अगर याद नहीं किया तो मत कहें कि आपको याद किया। हम वक्त देख के, मौका देख के जुबान से बात निकालते हैं। नहीं, वत्तकू, तुम्हारी जुबान नहीं बोलेगी, तुम्हारी आंख झुक जाएगी जब गलत चीज देखोगे, तुम अपने कानों पे हमें उंगली रख लोगे, कोई गलत बात कहने लगेगा आप फौरन रोक देंगे, क्योंकि वत्तकू, मुझे अल्लाह का डर है। फिर तीसरी चीज है वाकीमुस्सला, और नमाज कायम करो। देखिए मुनीब और वत्तकू पर अमल किए बगैर नमाज बेकैफ है। जब तक आप मुनीब नहीं होते, यानी खुद पूरी जहनी तैयारी से जाए नमाज पे नहीं खड़े और अल्लाह के आपकी तरफ मुतवज्जा होने को नहीं देखते, तो नमाज वही है जो मरी है, टकरे भूली बिसरी याद आएगी, चाबियां कहाँ रखी थी नहीं मिल रही, वल्लाह ही आप 2 नफिल की नियत करें, फौरन याद आ जाएंगी चीज, भूली बिसरी याद आ जाएगी, फ्यूचर प्लानिंग आपकी हो जाएगी, दिस एंड दैट हो जाएगा, और वो नमाज क्या? वही बात है कि तेरे ये सजदे तुझे काफिर ना कर दे, कि तू कहता कुछ और है और सोचता कुछ और है, तेरे लफ्ज कुछ और है। या कना बुदू भैया का नस्ताइन, और कॉल और अमल हमारा क्या कहे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लोग बातें करेंगे, नहीं। वह अकीम उस्सलात, देखिए पीछे अकीम क्या था, फाकिम वजह कले दीनी हनीफा, और यहां नमाज के लिए अकीम, इसको समझिए। हमेशा हम कुरान में लफ्ज नमाज के साथ इकरा सलात नहीं पढ़ते, हालांकि पढ़ने को सर इकरा, यतलू भी नहीं कहते, उतलू भी नहीं कहते, तथलू भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? अकीम उस्सला। क्या? कि नमाज बंदे को इस तरह खड़ा करती है कि वो अल्लाह के दीन के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए, क़यामत के दिन के लिए खड़ा होने को तैयार। दुनिया में जहां अल्लाह का हुक्म टूटेगा, बंदा खड़ा हो जाता है नमाजी, कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, गलत किया आपने, मैं आपकी इस बात का साथ नहीं दूंगा। जब ये बंदे के अंदर इस्तकामत आती है, तो ऐसे बंदे के तो अल्लाह आधे जुमले की भी बड़ी कदर करता है, कि फरिश्तों ये मेरा बंदा है, जहां मौका पड़ता है ये मेरे बिहाफ पे खड़ा हो जाता है। ऐसे बंदे का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। बज़ाहिर वो लोगों से मामला कर रहा होता है, लोग उससे मामला कर रहे होते हैं, पीछे अल्लाह कहता है कि तुम इसके साथ नहीं, तुम मेरे साथ मामला कर रहे हो। पीछे पढ़ा आपने जिब्राइल का जो दुश्मन है, अल्लाह कहता है वो तो मेरा दुश्मन है, वो तो मीकाइल का भी दुश्मन है, वो रसूलों का भी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के लिए खड़े हो गए थे। तो नमाज हम वो पढ़ें जो हमें अल्लाह के लिए स्टैंड लेना सिखाए। वक्त के रिवाज में बह जाएंगे खसो खाशाक की तरह तो बेनमाजी है। नमाज वो है जो बंदे को अल्लाह के नाम पे खड़ा कर दे। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से ना हो जाओ। शिर्क की कोई जाहरी बातनी किस्म तुम्हारी जिंदगी में ना आए। جب تم اس میں آگے تو پھر آگے، پھر تمہاری زندگی پوری کی پوری اللہ کی والی زندگی ہوگی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جینے کی اصل لذت کیا ہے. اور یہ شرک جو ہے نا، یہ قبروں والا بھی نہیں ہوتا. غیر اللہ اگر آپ کے دل میں آ گیا، آپ کی سوچوں میں آ گیا، آپ کے خیالات میں آ گیا، محبت میں آ گیا، یہ سب جگہ شریک بن گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حنیف بنا دے، فوکس کر دے. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا کہ وہ ہمیں اپنا بننا بھی سکھاتا ہے. اگر اللہ نے ہمیں سکھایا ہی نہ ہوتا اور کل قیامت کے دن پوچھ لیتا، پھر کیا ہوتا؟ حضرت عمر نے پوچھا تھا معاذ سے، تو معاذ نے یہ جواب دیا. یہ تین چیزیں ہیں اور یہی نجات کی جڑیں ہیں. اول اخلاص، جو فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. دوسری چیز نماز ہے، جو اصل دین ہے. اور تیسری اطاعت ہے، جو عصمت اور بچاؤ ہے. حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، تمہیں مشرکوں سے نہ ملنا چاہیے، تمہیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. مطلب کیا ہے؟ کہ ان جیسے کام نہیں کرنے چاہیے جنہوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا، بعض باتوں کو مان لیا، بعض کا انکار کر دیا. یہ نہ کرو. پیچھے پڑا نا فرقوا دینہم، یہ نہ کرو. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. مستدرک حاکم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو اتنے فرقے بن جائیں گے قیامت کے قریب، تو ان سب میں سے نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، من کانا علی ما انا علیہ الیوم واصحابی، وہی لوگ جو اس پر ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے اصحاب ہوں گے، وہی لوگ جو ہیں کل نجات پائیں گے. تو فوکس لوگ کل پہنچیں گے اللہ تک اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پائیں گے. کیا سیکھا اس ایکت سے؟ سب سے نگاہیں اٹھا کر ایک رب پہ نگاہیں لگا لیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے ایسے معاملے آسان کر دے گا جو آج آپ کو مشکل لگتے ہیں. بالکل اگر آپ پہ ایک دائرہ کھینچے نا اور اس کے اندر خود کو کھڑا کر لیں، تو اس ایک دائرے کے ارد گرد ہر موڑ پہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، یہ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے. ہم سب جو بھی کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا عمل ضرور ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہو کہ انڈائریکٹ ہو. یہ ضروری نہیں کہ آج آپ نے صبح اچھی طرح سے نماز پڑھی تو آج سارا دن آپ کو بڑی خیر ملے. نہیں، آج بھی کوئی تکلیف ہو سکتی. وجہ کیا؟ کہ یہ پچھلے ہفتے کا کوئی اللہ نے حساب چکایا ہے کہ فرشتوں پکڑو ذرا اس کی، اس گناہ پہ اس کو پکڑ کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے دے اور سیدھا کر دے، اور ہم واقعی خود کو سیدھا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے خیر ملے گی.